नमस्कार भारत, आज है 17 दिसंबर दिन शनिवार और मैं हूं अमरीश द्विवेदी। हिलरी क्लिंटन ने चुनाव में हार के लिए रूस की हैकिंग को ठहराया जिम्मेदार। बराक ओबामा ने कहा, चुनाव की निष्पक्षता के मद्देनजर पहले इस पर नहीं दिया कोई बयान।
At a time when my primary concern was making sure that the integrity of the election process was not in any way damaged.
नोटबंदी पर आरोप प्रत्यारोप के साथ बिना किसी खास कामकाज के खत्म हुआ संसद का शीतकालीन सत्र। रिहान फजल की विवेचना में आज सुनिएगा परमवीर चक्र से सम्मानित बांग्लादेश की लड़ाई के हीरो अरुण खेत्रपाल की कहानी।
अरुण खेत्रपाल ने 4 टैंक उनके जो है डिस्ट्रॉय कर दिए और जब चौथा टैंक डिस्ट्रॉय किया, इन्होंने जब फायर किया और उधर से जो है 31 कैब के स्क्वाड्रन कमांडर ने फायर किया तो दोनों टैंक डिस्ट्रॉय हो गए।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के हाथों हार का सामना करने वाली हिलेरी क्लिंटन ने पहली बार अपनी हार के लिए रूस की हैकिंग की बात उठाई है। राष्ट्रपति चुनाव में हिलेरी क्लिंटन डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार थीं। हिलेरी ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनसे निजी शिकायत थी। रूस पर डेमोक्रेटिक पार्टी के ईमेल हैक करने का आरोप है, हालांकि रूस इन आरोपों से इनकार करता रहा है। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि उन्होंने सितंबर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि वो अमरीकी चुनाव की प्रक्रिया में दखल देना बंद कर दें। साल के आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओबामा ने कहा कि उन्होंने पुतिन से कहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें नतीजे भुगतने होंगे। ओबामा के मुताबिक इसके बाद हैकिंग बंद हो गई। ओबामा ने निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि वो अमरीकी चुनाव की प्रक्रिया में दखल को गंभीरता से लें। सीरिया के पूर्वी अलेप्पो में फंसे लोगों को बाहर निकालने का अभियान थम गया है। शुक्रवार से कोई काफिला बाहर नहीं गया है। सीरिया के एक अधिकारी के मुताबिक समझौते के तहत विद्रोहियों को सरकार के नियंत्रण वाले 2 शहरों से घेरेबंदी हटानी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस बीच खबरें हैं कि विद्रोही समूह अपने घेरेबंदी वाले 2 शहरों से घायलों को बाहर जाने देने के लिए तैयार हो गए हैं। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेडक्रॉस के अलेप्पो में मौजूद अधिकारी पावेल शिशिक ने मौजूदा हालात की जानकारी देते हुए कहा,
I could definitely sense fear, desperation,
लोग बाहर जाने का मौका नहीं गंवाना चाहते हैं। मैं उनका डर, बेताबी और उत्सुकता महसूस कर सकता हूं। वो अपने सामान, बच्चों, बुजुर्गों और घायलों के साथ सड़कों पर इंतजार कर रहे हैं। खुद को गर्म रखने के लिए वो प्लास्टिक जला रहे हैं। यहाँ जबरदस्त सर्दी है। मैं सैकड़ों लोगों को बाहर निकलने का इंतजार करते हुए देख रहा हूँ। ये थे पावेल शिशेक के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीका ने समुद्री ड्रोन जब्त किए जाने के मामले को लेकर चीन के सामने औपचारिक विरोध दर्ज कराया है। अमरीका के मुताबिक चीन ने दक्षिण चीन सागर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के अंदर आंकड़े जुटा रहे ड्रोन को जब्त कर लिया। अमरीका का कहना है कि उसका एक जहाज इस ड्रोन को हासिल करने वाला था, तभी चीन ने उसे जब्त कर लिया। चीन ने अभी इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। प्रेस की स्वतंत्रता की मांग को लेकर पोलैंड की संसद में हुए प्रदर्शन की वजह से बजट पर मतदान नहीं हो सका। संसद भवन में पत्रकारों की संख्या सीमित करने की सरकार की योजना के खिलाफ विरोधी पक्ष के सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सांसदों का एक समूह कई घंटे तक स्पीकर के आसन के पास जमा रहा। सरकार का कहना है कि उसे यह नहीं लगता कि ये कदम प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करेगा, लेकिन संसद कवर करने वाली पत्रकार कैटाजेना जेलेस्का कहती हैं कि इससे पत्रकारिता के स्तर पर असर होगा। उन्होंने कहा, संसद कवर करने वाले पत्रकार संसद के बाहर रहेंगे। वो एक ऐसी इमारत में रहेंगे जो संसद से जुड़ी हुई भी नहीं है। वो सांसदों की तस्वीर लेने के लिए भी संसद में दाखिल नहीं हो पाएंगे। वो संसद भवन की तस्वीर भी नहीं ले सकेंगे। सिर्फ कुछ चुने हुए पत्रकारों को प्रतिबंधों के साथ संसद में दाखिल होने की अनुमति रहेगी। इससे हमारे काम की गुणवत्ता और सूचनाओं तक पहुंच होने पर सवालिया निशान लग जाता है। ये थे पोलैंड की पत्रकार कैटाजेना के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन जेल सेवा की विशेषज्ञ टीमों ने बर्मिंगम जेल पर दोबारा अधिकार हासिल कर लिया है। जेल के कैदियों ने 12 घंटे तक इसके एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था। प्रिजनर और ऑफिसर यूनियन के प्रमुख माइक रोफ ने इसे 1990 के बाद से सबसे बुरा मामला बताया। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के हाथों हार का सामना करने वाली डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने अपनी पराजय के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि रूस द्वारा की गई हैकिंग की वजह से उन्हें चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा है। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रूस की ओर से की गई कथित हैकिंग की रिपोर्टों को लेकर अपनी कार्रवाई का बचाव किया है। ओबामा ने कहा कि उन्होंने इस बारे में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की थी। साल की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओबामा ने सीरिया को लेकर अपनी रणनीति का भी बचाव किया है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे के सार के साथ वात्सल्य राय।
अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में हार के लिए हिलेरी क्लिंटन ने पहली बार रूस की हैकिंग को जिम्मेदार बताया है। हिलेरी क्लिंटन राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार थीं और उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के हाथों हार झेलनी पड़ी। हिलेरी ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनसे निजी शिकायत थी, क्योंकि उन्होंने 5 साल पहले रूस के संसदीय चुनाव में धांधली की बात की थी। हिलेरी ने हैकिंग को अमरीका पर हमला बताया। रूस पर डेमोक्रेटिक पार्टी और हिलेरी क्लिंटन की एक प्रमुख सहयोगी के ईमेल हैक करने का आरोप है, लेकिन रूस इन आरोपों का जोरदारी से खंडन करता रहा है। इस बीच साल की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हैकिंग के आरोपों को संभालने के अपने तरीके का बचाव किया है। ओबामा ने कहा,
At that time, we did not attribute motives or...
उस वक्त हमने मकसद की बात नहीं की थी। हमने इस बारे में कुछ नहीं कहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका असर क्या हो सकता है, हमने इस पर भी चर्चा नहीं की थी। हमने सिर्फ लोगों को जानकारी दी, जैसे कि हमने कांग्रेस के सदस्यों को जानकारी दी कि ऐसा हुआ है। एक विभाजित माहौल के दौरान मेरी पहली चिंता ये सुनिश्चित करना था कि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को धक्का न लगे। ये थे बराक ओबामा के शब्द। ओबामा ने ये जानकारी भी दी कि उन्होंने सितंबर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि वो अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना बंद कर दें। ओबामा ने बताया कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये जारी रहा तो इसके परिणामों का सामना करना होगा। इसके बाद हैकिंग बंद हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओबामा ने सीरिया की स्थिति को लेकर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा,
With respect to Syria, what I have consistently done is taken the best course that I can.
सीरिया में गृह युद्ध खत्म करने के लिए मैं जो कुछ कर सकता था उसे मैंने नियमित तौर पर बेहतरीन तरीके से किया। इसके साथ लंबे वक्त के लिए अमेरिका के सुरक्षा हितों को ध्यान में रखना भी जरूरी था। ये थे बराक ओबामा के शब्द। उधर सीरिया के पूर्वी अलेपो में फंसे लोगों को बाहर निकालने का अभियान थम गया है। शुक्रवार सुबह से फंसे लोगों को लेकर कोई काफिला बाहर नहीं आया है। सरकार ने इसके लिए विद्रोहियों के समझौते की शर्त न मानने को जिम्मेदार बताया है।
ब्यौरा सुना रहे थे वात्सल्य राय।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो।
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
भारतीय संसद के शीतकालीन सत्र का कल आखिरी दिन था। नोटबंदी के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में वक्तव्य की मांग की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी इसका जवाब संसद की बजाय बाहर देते नजर आए। प्रधानमंत्री ने पार्टी सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को नोटबंदी करने का सुझाव दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे ये कहकर खारिज कर दिया कि क्या कांग्रेस को आगे चुनाव नहीं लड़ना है। हमारी सहयोगी सुशीला सिंह ने वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता से बात की और पूछा कि नोटबंदी पर सरकार और विपक्ष दोनों के रवैये को वो कैसे देखते हैं।
दोनों ने जो नाक का सवाल बनाया, और ये ठीक है कि जितना बड़ा हंगामा था और जिस तरह की स्टेप उठाई गई, खास करके नोटबंदी को लेकर के, इंडिया में कभी आजादी के बाद इतना बड़ा फैसला नहीं हुआ। इसके बाद अपोजिशन ने यदि आवाज उठाई वो अपनी जगह थी, लेकिन सरकार का भी जो रुख है वो बहुत ही नाक के सवाल की तरह रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि संसद में, राज्यसभा में 10-12 लोग बोल चुके थे, और हमेशा ये परंपरा रही है इंदिरा गांधी डेज से। हमने पार्लियामेंट, जिन लोगों ने भी कवर किया है, हमने जानते हैं कि हस्तक्षेप उन 10 के बाद भी प्रधानमंत्री कर सकते थे, तो उससे सारी समस्या समाधान हो सकती थी। लेकिन ये रुख बनाया गया कि किसी तरह से ये एक्सपोज किया जाए या ये साबित किया जाए कि अपोजिशन ही, चूंकि काला धन लाता है और काला धन में इंटरेस्टेड रहता है, भ्रष्टाचार करता है, इसलिए वो एक्सपोज होंगे चूंकि वो विरोध कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि दोनों ही पक्ष ने नाक का सवाल बना के संसद के सत्र को जिस तरह से पूरा विफल भी हुआ।
जी, वहीं नरेंद्र मोदी ने कल पार्टी के सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि नोटबंदी को लेकर वांछू समिति ने भी तत्कालीन प्रधानमंत्री اندرا گاندھی کو سفارشیں دی تھی لیکن ان کی سفارشیں انہوں نے نامنظور کر دی تھی, اور ایک طرح سے یہ درشانے کی کوشش کی جا رہی تھی نریندر مودی کی طرف سے کہ دل سے زیادہ جو ہے دیش سروپری ہے پارٹی کے لیے.
یہ بڑا درواگیہ پورن ہے, اتنی سرکاریں آئی, بہاری واجپئی کی آئی, گجرال کی آئی, لیفٹ پارٹی کے لوگ بھی ستا میں رہے, کسی میں اندرا گاندھی کی ایمرجنسی یا ان کی کچھ اور غلطیاں ہو سکتی ہیں, نہرو کی بھی ہوئی ہوں گی, سب کی غلطیاں, کسی بھی دنیا میں جنسن چرچل کی بھی کئی غلطیاں لوگ مانتے ہیں آج بھی, لیکن یہ غلطی اس لیے نہیں ہے کہ جس کا ذکر پردھان منتری نے کیا ہے, شاید ان کو یہ پورا انہوں نے اسٹڈی کیا, جن لوگوں نے بھی ان کو صلاح دی یا بتایا ہے 71 میں, جو ہم لوگ بھی تب پارلیمنٹ کور کرتے تھے, 71 میں بنگلہ دیش والی استھتی کو یاد کریے, جس سمے اس طرح کے پرستاؤ آئے, بھائی بھی چوہان یا اس کے پہلے بھی جو سنڈیکیٹ تھی, ایس کے پاٹل وغیرہ, چوہان تو بعد میں اندرا جی کے ساتھ ہی رہے تھے اور وت منتری بھی تھے, لیکن یہ اس سمے میں جس سمے امریکہ کے ساتھ, چین کے ساتھ, سارے جتنے پاکستان کے ساتھ جو تناؤ چل رہا تھا, بنگلہ دیش چرم سیما پر اس کی استھتی آنے والی تھی, اس سمے یدی پردھان منتری نے اندرا گاندھی نے کہا کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے, اور نہ تب آرتھک استھتی بہت اچھی تھی ہماری, اور امریکہ کے ساتھ ٹکراؤ تھا, ساتواں بیڑا بنگلہ دیش کے سمے میں سامنے آ گیا تھا, اس لیے یدی اس پریپیکش میں دیکھا جاتا تو شاید یہ ٹپنی کی اتنی آوشیکتا نہیں تھی. ٹھیک ہے, اس سمے کیوں نہیں کیا گیا اس کو آپ ذکر بھی کریں, لیکن یہ کہنا کہ ہم نے کیا اور وہ پہلے انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ وہ پارٹی یا بھرشٹاچار کے لیے کر رہے تھے, یہ مجھے لگتا ہے کہ دیش کے ساتھ اور اتہاس کے ساتھ یہ نیائے نہیں ہے.
یہ تھے ورشٹھ پترکار آلوک مہتا. نوٹ بندی کا اثر بھارت میں ہی نہیں بلکہ پڑوسی دیش نیپال میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے, کیونکہ بھارتیہ نوٹوں کا چلن نیپال میں بھی ہوتا رہا ہے. اپنی سمسیا کو لے کر نیپال راشٹر بینک کے ادھیکاری بھارت آنے والے ہیں. ہماری سہیوگی سوشیلا سنگھ نے نیپالی سیوا کے سنجے ڈھکال سے اس بارے میں اور جانکاری مانگی.
جب سے یہ نوٹ بندی ہوا ہے بھارت میں, اسی سمے سے نیپال میں بھی کافی دقت ہوئی ہے. یہاں کے کافی لوگوں کے پاس جو 500 اور 1000 کے نوٹ بھارتی روپیہ ہے, تو اس لیے مطلب نیپال کے پردھان منتری نے بھارت کے پردھان منتری سے بھی ایک بار بات کی تھی فون میں کہ کیسے اس کو سالو کیا جائے, اور پھر بعد میں دونوں دیش کے فائنینس منسٹرز سے بھی بات ہوئے, اور دونوں دیش کے سینٹرل بینکس کے گورنر بھی اس بارے میں چرچا مطلب کیے ہیں بہت بار, لیکن کچھ انڈیا سے مخصوص قسم کا کوئی جواب ابھی تک نہیں آیا. تو اب کیا ہے کہ یہاں کے فائنینس منسٹر نے ایک ڈیسیزن لیا کہ ایک ڈیلیگیشن راشٹر بینک جو نیپال کا سینٹرل بینک ہے اس کی ڈپٹی گورنر کی ریسیپ میں ایک ڈیلیگیشن کو دلی بھیجا جائے گا تاکہ وہاں پہ جا کے وہاں کے آر بی آئی کے افسروں سے بات چیت کی جا سکے کہ کچھ حل نکل سکے.
یہ جاننا چاہیں گے کہ نوٹ بندی ہے یہ نیپال میں کتنا بڑی سمسیا ہے.
سن 2000 کے بعد سے یہ بڑی ڈینومینیشن والا بھارتی کرنسی نیپال میں بین تھا. بعد میں جب نریندر مودی جی پردھان منتری ہوئے, پہلی بار جب انہوں نے نیپال کی بھرمن کی, اس کے بعد سے 2014 کی اینڈ کے سمے سے یہ 500 اور 1000 کی بھارتی روپیہ نیپال میں پھر سے چلنے لگی, لیکن ایک سیلنگ طے کیا گیا تھا کہ مطلب ایک آدمی زیادہ سے زیادہ 25,000 تک ہی ان ڈینومینیشن میں رکھ سکتا تھا. جو سیما ہے اسی سیما میں رہ کر بھارت کو نیپالی کی مطلب آرڈینری نیپلیز کے پاس جو بھی ہے وہ 25,000 تک لینا چاہیے, ایسا نیپال کا ابھی ماننا ہے. بہت سی نیپلیز کے پاس وہ روپے ہوں گے, کتنی تعداد میں ہے اس کا کوئی پرشٹ آنکڑا نہیں آیا ہے. فیڈریشن آف نیپلیز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اس کا ماننا ہے کچھ 100 کروڑ ہوں گے ٹوٹل میں. یہاں پہ 8 نومبر کے بعد سے ایک چنتا ہے کہ کیا ہوگا ان روپیوں کا. ان تو یہاں کے مطلب ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کہ 31 December تک جو سمے سیما انڈین گورنمنٹ نے رکھی ہے اس سمے سیما تک ہوپ فل ہو کر کے ویٹ کرنا اچھا رہے گا.
یہ تھے بی بی سی نیپالی سیوا کے سنجے ڈھکال.
بی بی سی انڈیا بول.
گیہوں سے آیات شلک ہٹا کر کیا کسانوں کی مدد کر رہی ہے نریندر مودی سرکار؟ ودیشوں سے گیہوں خریدا گیا تو اپنی فصل کا کیا کرے گا بھارتی کسان؟ اس شنیوار بی بی سی انڈیا بول میں اسی وشے پر ہمیں انتظار رہے گا آپ کی رائے کا. کارکرم میں شامل ہونے کے لیے مفت فون کریں 1811-7000 اور 1811-7001 پر.
بی بی سی انڈیا بول.
1971 کو زیادہ تر لوگ بنگلہ دیش یدھ کے لیے یاد کرتے ہیں, لیکن اس لڑائی میں پشچمی مورچے پر بھی گھماسان یدھ ہوا تھا. بسنتر کے ٹینک یدھ میں 21 سال کے سیکنڈ لیفٹیننٹ ارون کھیترپال نے پاکستان کے 4 ٹینک نسٹ کرنے کے بعد اپنے پرانوں کی آہوتی دی تھی, جس کے لیے انہیں بھارت کا سروچ ویرتا سمان پرمویر چکر دیا گیا تھا. ارون کھیترپال کی 45ویں پنیہ تیتھی پر انہیں یاد کر رہے ہیں ریحان فضل آج کی ویویچنا میں.
थोड़ा सा अलग सा नाम था उनके सेंचुरियन टैंक का, फामागुस्ता, साइप्रस के एक बंदरगाह के नाम पर। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल अपने सामने छितरे पड़े हुए पाकिस्तानी टैंकों को निहार रहे हैं। उनमें से ज्यादातर आगे बढ़ने के काबिल नहीं है। उनके खुद के टैंक में आग लगी हुई है, लेकिन अभी उसकी फायर करने की क्षमता बरकरार है। खेत्रपाल के गले की नस बुरी तरह से फड़क रही है। अगर वो 150 गज की दूरी पर आते हुए टैंक को भी उड़ा देते हैं तो उनके द्वारा ध्वस्त किए गए टैंकों की संख्या 5 हो जाएगी। उन्होंने अपना रेडियो सेट ऑफ कर रखा है क्योंकि उनका कमांडर उनसे कह रहा है, अरुण वापस आओ। तभी अचानक सीटी की आवाज करता हुआ एक गोला उनके टैंक के कपोला को भेदता हुआ निकल जाता है। उस स्प्लिट सेकेंड में अरुण को एहसास नहीं होता कि उनके पेट के चीथड़े उड़ चुके हैं। गनर नथु सिंह उन्हें उनकी सीट से उठाने की कोशिश करते हैं। खेत्रपाल के मुंह से बस इतना निकलता है, मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा। कुछ ही पलों में अरुण का सिर लुढ़क जाता है। उनके पेट का जख्म इतना गहरा है कि उनकी आंतें बाहर निकल आई हैं। समय है सुबह 10:15, दिन 16 दिसंबर 1971। अरुण खेत्रपाल दम तोड़ते हैं। उनकी उम्र है मात्र 21 साल। 3 ग्रेनेडियर्स के कर्नल चीमा को वो दृश्य अभी भी याद है जैसे वो कल की ही बात हो।
जो हमारे स्क्वाड्रन कमांडर थे मेजर बाल, उन्होंने देखा कि भाई प्रेशर जो है बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इन्होंने और मदद मांगी कि हमें और टैंक जो है भिजवाइए। और वो जो टैंक उन्होंने भिजवाए उसके अंदर 3 टैंक थे, कमांडेड बाय 3 ऑफिसर्स, एक कैप्टन मल्होत्रा, एक लेफ्टिनेंट अलावत और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। इन्होंने तीनों ने जो है उनके 7 टैंक डिस्ट्रॉय किए। इतनी देर में अलावत का टैंक जो है वो हिट हो गया, जलना शुरू हो गया। उसके बाद जो अरुण खेत्रपाल का टैंक जो है ये भी हिट हो गया। इसको बोला गया कि तुम पीछे हटो, तो ये कहने लगा कि मैं पीछे अभी नहीं हट सकता हूँ, माई टैंक माई गन इज स्टिल फायरिंग। इसने अपना रेडियो सेट जो है वो बंद कर दिया ताकि इसको दोबारा हुक्म ना मिले कि तुम पीछे आओ। अरुण खेत्रपाल ने 4 टैंक उनके जो है डिस्ट्रॉय कर दिए। और जब चौथा टैंक डिस्ट्रॉय किया, इन्होंने जब फायर किया और उधर से जो है 31 कैब के स्क्वाड्रन कमांडर ने फायर किया, तो दोनों टैंक डिस्ट्रॉय हो गए। और वो जो स्क्वाड्रन कमांडर जो थे वो भी जख्मी हो गए थे और ये भी जो है शहीद हो गए थे।
6 फीट 2 इंच लंबे अरुण खेत्रपाल एक सैनिक परिवार से आते थे। उनके दादा ने प्रथम विश्व युद्ध और पिता एमएल खेत्रपाल ने द्वितीय विश्व युद्ध और 1965 की लड़ाई लड़ी थी। बचपन से ही अरुण में नेतृत्व और जिम्मेदारी के गुण थे, अरुण के छोटे भाई मुकेश खेत्रपाल याद करते हैं।
मेरे पिताजी दिल्ली में पोस्ट थे, तो हम सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़े। सनावर जाने से पहले स्कूल जैसे ख़त्म होता था तो कार का पुल था, उसमें हमें पिकअप होता था। उस दिन कार नहीं आई किसी वजह से, काफ़ी देर तक हम बैठे रहे। अरुण मतलब मेरे ख्याल में 7 साल के होंगे और मैं 6 साल का। सब लोग, सब बच्चे सब घर चले गए और हम वहाँ पर अकेले बैठे रहे। काफ़ी देर तक हम वेट करते रहे। फिर अरुण ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, घर पैदल चलते हैं। तो हम काफ़ी दूर के ई आर मेस है यहाँ पे, सांगी मेस के पास में, तो लंबा चलता था। तो हमने अच्छा चलिए, तो मैं चलता गया। पर हमारे यहाँ जैसे स्कूल के बस्ते भारी भारी होते थे, तो बीच में मैंने कहा कि अब ये बस्ता नहीं, तो उन्होंने मेरा बस्ता उठा लिया। मैं कहा, पूछता गया कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं, और मैं तो रोता गया। और अरुण ने बिल्कुल ऐसे एक भी आंसू नहीं दिखाया और मुझे दिखाया कि नहीं नहीं यही है, थोड़ा और आगे, थोड़ा हौसला देते गए। तो करते करते हम घर पहुंच गए, और जब हम घर पहुंचे तब अरुण बहुत ज़ोर से रोए। मुझे नहीं दिखाना था उनको, कहीं ये मुझे महसूस कर लेते कि वो भी खुद घबराए हुए हैं, तो फिर मेरा तो जो ना हालत बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता।
यही नहीं, अरुण में दया और करुणा का भाव भी कूट कूट कर भरा हुआ था। सैनिक इतिहासकार और परमवीर चक्र विजेताओं पर किताब द ब्रेव लिखने वाली रचना बिष्ट रावत बताती हैं।
वो 6 साल के थे और उनके स्कूल में कोई गरीब बच्चा था
तो अपना स्वेटर उसको दे आए, वो सर्दी का मौसम था, शिलोंग में शायद नॉर्थ ईस्ट में कहीं पोस्टेड थे उनके फादर, और घर में ये डर से कि माँ डांटेगी, उन्होंने झूठ बोला कि मेरा स्वेटर गुम हो गया। वो बच्चा बाद में मुकेश खेत्रपाल उनके छोटे भाई को मिला, IIT दिल्ली में शायद उनको मिला, तो उस बच्चे को याद था कि कैसे 6 साल की उम्र में वो अपना स्वेटर देकर के आए थे।
1971 की लड़ाई से पहले अरुण अहमदनगर में यंग ऑफिसर्स कोर्स कर रहे थे कि ये आदेश जारी हुआ कि सभी अफसर कोर्स छोड़कर अपनी अपनी रेजिमेंट में चले जाएं। उस कोर्स में उनके बैचमेट और बाद में ब्रिगेडियर बने ब्रिजेंद्र सिंह याद करते हैं।
ये एक्चुअली 6 महीने का कोर्स था, लेकिन करीब 3 या 4 दिन ही हुए थे कि फौज को मोबिलाइज कर लिया गया और लड़ाई के आसार नज़र आने लगे। हमको एक दिन सबको इकट्ठा किया गया अहमदनगर में और हमें बताया गया कि आर्मी मोबिलाइज हो रही है और आपको अपने अपने यूनिट्स में वापस जाना है। उस ज़माने में कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी अहमदनगर के लिए, तो एक पैसेंजर ट्रेन चलती थी जो मनमाड़ लेके आती थी, और मनमाड़ से फिर हमने पंजाब मेल पकड़नी थी। रिजर्वेशन तो थे नहीं क्योंकि नोटिस बहुत कम था, तो मनमाड़ स्टेशन पे जब पंजाब मेल आई तो जगह ना होने के कारण हम सब उसका जो डाइनिंग कार होती थी उन दिनों में, तो उस डाइनिंग कार में घुस गए। तो हमारे को सबने आके बताया रेलवे वालों ने कि जी ये आप नहीं, यहाँ यहाँ नहीं बैठ सकते आप, और नीचे उतरिए। तो हमने बड़ा उन्हें कहने की कोशिश की कि हम देश की रक्षा के लिए जा रहे हैं, ये है वो है, तो लेकिन वो कुछ इम्प्रेस हुए नहीं हमसे। सो उन्होंने कहा अगर नहीं उतरेंगे तो हम इस डाइनिंग कार को डिटैच कर देंगे ट्रेन से। पर आखिर में चलो ये हुआ कि रेलवे वालों ने कहा कि चलो हम आपको, रिजर्वेशन तो है नहीं, हम दे नहीं सकते आपको जगह कोई, लेकिन कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देते हैं, आप नीचे उतर जाओ। तो जैसे ही हम नीचे उतरे तो उन्होंने ट्रेन चला दी। तो फिर हम भागते दौड़ते, कोई किसी डब्बे में, कोई किसी डब्बे में चढ़ा, तो अरुण पहले एक डब्बे में चढ़ गया था और वो जो बाहर रेलिंग होती है दरवाजे के साथ वो पकड़ के खड़ा था, और मैं अभी भाग रहा था तो मेरा पाँव स्लिप कर गया और कुदरतन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के ऊपर खींच लिया मुझे, वरना उस दिन शायद मैं ट्रेन के नीचे आ जाता। उनके अंदर ये जो क्वालिटीज़ थी लीडरशिप की और किसी भी चीज़ को बखूबी करने की और मदद करने की, ये शुरू से ही हर उनके एक्शन में, चाहे वो स्पोर्ट्स खेलते थे या कुछ और करते थे, तो हर जगह झलकती थी।
अपनी रेजिमेंट में जाने से पहले अरुण कुछ घंटे दिल्ली में रुके, अपने माता पिता और भाई से मिले और फिर फ्रंट के लिए रवाना हुए।
घंटी बजी, शाम को हमने देखा तो अरुण बाहर खड़े, तो हमने कहा कि आप कैसे, कि नहीं नहीं हमारा कोर्स कैंसिल हो गया, हम तो फॉरवर्ड एरिया में जा रहे हैं, अब मैं बस ये मोटरसाइकिल यहाँ पे छोड़ने जा रहा हूँ। जब अरुण जा रहे थे तो सारी चीज़ छोड़ दी, पर जाते जाते उन्होंने अपना गोल्फ बैग उठा लिया, और साथ साथ में एक होता है इनका जो फॉर्मल डाइनिंग का ब्लू पेट्रोल जिसको कहते हैं, जो है ना इनकी पार्टीज होती हैं, तो ब्लू पेट्रोल वो भी पैक कर लिया। पिताजी ने उनसे पूछा ये क्या ले जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं जब हम लाहौर पहुँचेंगे तो गोल्फ तो खेलेंगे, ये वॉज अ गुड गोल्फर, और ये ब्लू पेट्रोल क्यों पार्टी होगी, ब्लू पेट्रोल तो पहनेंगे। ये उनके जो है ना दिल की बात थी, जो था जो उन्होंने सोच के जैसे वो पहुंचे, चाहे आप जोश कहें, यंग मैन थे, एंड एक्चुअली जब ये वॉर के बाद में वो गोल्फ बैग और वो ब्लू पेट्रोल, ये दो चीजें आई हमें, मतलब रिटर्न करी गई थी।
16 दिसंबर 1971 को बी स्क्वाडन के कमांडर ने SOS किया कि उन्हें री इन्फोर्समेंट की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तानी टैंक बड़ा हमला करने के लिए जमा हो रहे हैं।
दुश्मन बार बार 14 टैंकों के साथ अटैक कर रहा था, एक वेव फिर दूसरी वेव, इस प्रकार मल्होत्रा का टैंक जो था वो टेक्निकल कोई उसमें प्रॉब्लम आ गया और उसकी गन बंद हो गई फायर करनी। अलावत जो था, अवतार अलावत, उसके टैंक के ऊपर गोला लगा और वो उसमें आग लग गई और वो खुद जख्मी हो गए। तो सिर्फ एक अरुण खेत्रपाल थे जो अकेले पूरे फ्रंट को संभाले हुए थे। तो उन्होंने पहले तो 4 टैंक बर्बाद किए, उनके फिर टैंक पे भी गोला लगा और उसमें आग लग गई, और उनको CO साहब ने बोला कि आप अपने टैंक से हट जाओ। तब उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी गन फायर कर रही है और मैं बिल्कुल नहीं पीछे हटूंगा। उनका ड्राइवर था पराग सिंह, जब आग लगी टैंक में उसने कहा कि साहब मैं पीछे थोड़ा सा 10-15 गज पीछे ले लेता हूँ टैंक को और आग को बुझा के फिर आगे आ जाएंगे। तब अरुण ने कहा कि नहीं, 1 इंच भी नहीं, क्योंकि CO साहब का ये हुक्म था कि हम जहाँ खड़े हैं वहीं से खड़े होकर लड़ेंगे।
कर्नल चीमा बताते हैं कि लड़ाई खत्म होने के बाद पाकिस्तानी कमांडर ने भारतीय इलाके में आकर अरुण खेत्रपाल के टैंक की ओर इशारा करके पूछा था कि इसे कौन चला रहा था।
जब लड़ाई खत्म हुई उनके स्क्वाड्रन कमांडर आए तो वो कहने लगे कि भाई मैं उस टैंक कमांडर को मिलना मांगता हूँ जिसने मेरे टैंक को इतने क्लोज रेंज से डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत तगड़ा स्क्वाड्रन कमांडर समझता था, तो लेकिन उसको हम ये बताना नहीं चाहते थे कि वो शहीद हो गए हैं, तो उनको बताया गया कि नहीं भाई, वो हमको पीछे जो है वो दूसरी जगह पे उनको मूव कर दिया गया है।
अरुण को इस वीरता के लिए भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र मिला। इस घटना के लगभग 30 साल बाद अरुण खेत्रपाल के पिता ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल को अपनी जन्मभूमि पाकिस्तान जाने का मौका मिला। लाहौर हवाई अड्डे पर उनका स्वागत ब्रिगेडियर ख्वाजा मोहम्मद नासिर ने किया।
पिताजी की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं एक दफ़ा अपने होम टाउन सरगोधा को मैं देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो बैक। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के पढ़े हुए थे, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का एनुअल डे फंक्शन था, तो ये लोग मतलब फ्लाइट पकड़ के वहाँ पे गए। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे ये था कि उन्होंने ओल्ड बॉयज़ के यहाँ इनको कहीं रहने का इंतज़ाम इनका कर रखा था। तो एक ब्रिगेडियर साहब थे तो उन्होंने कहा कि आप ब्रिगेडियर साहब आप इनके साथ में रहिए। तो ये बहुत ही खातिर उन्होंने करी। एक शाम पहले जब अगले सुबह रे उनको अपनी फ्लाइट पकड़ के वापस आना था, तो ब्रिगेडियर साहब ने, ब्रिगेडियर नासिर उनका नाम है, तो उन्होंने मैं कहा कि अंकल ब्रिगेडियर खेतपाल सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बेटा बोलो। कि 71 की वॉर में हम भी थे। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे बेटे भी थे। हाँ मुझे पता है। आपको कैसे पता? मैं 13 लांसर्स का हूँ। एंड फाइनली ही सेड कि आई वॉज द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ दैट रेजिमेंट ऑफ 13 लांसर्स एंड पुनः से आमना सामना हम जब रह गए थे तो खाली अरुण खेत्रपाल आपके बेटे और मेरी टैंक का आमने सामना रह गया था। हाँ हो सकता था कि मैं नहीं जीवित रह सकता, कि आज मैं नहीं होता आपको मिलने का मौका मिलना, और मुझे पता है कि जो गोला हमारी मेरी टैंक से फायर हुआ था वो आपकी पेट से के वो शहीद इसी से हुए थे। ऑफकोर्स ही सेड लॉट्स ऑफ अदर गुड थिंग्स कि इफ आई वॉज द फादर ऑफ सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल आई वुड बी वेरी प्राउड ऑफ हिम। हैड इट नॉट बीन फॉर हिम He broke our attack and we could not, we failed in our endeavor.
भारत में अब तक 21 परमवीर चक्र विजेता हुए हैं। वो ये सम्मान लेने वाले सबसे युवा सैनिकों में से एक थे। रचना बिष्ट रावत याद करती हैं।
रेहान अरुण क्लैरिनेट बजाया करते थे। ऑल लैंग साइन एक जो बहुत फेमस आर्मी में बहुत बजता है वो वाला संगीत वो बजाया करते थे, जो कि रॉबर्ट बर्न्स की एक कविता है जिसका मतलब है कि जो चले गए हैं उन्हें क्या हमें भूल जाना चाहिए। बहुत सारे हीरोज़ को तो हम भूल गए हैं, बट इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस कि हम अरुण को नहीं भूले हैं। और अरुण हमेशा हमारी यादों में 21 साल के अच्छे हसीन नौजवान जो बहुत ही बहादुर थे। एक उनकी फ़ोटोग्राफ है जिसमें वो यूनिफॉर्म पहन कर के कमर पर हाथ रख कर मुस्करा रहे हैं, जो मैंने उनकी मदर के बेडरूम में भी देखी थी। वही फ़ोटो मन में आती है। आई थिंक मुकेश ऑल्सो टोल्ड मी, जब मैंने उनको इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा कि देखो मैं कितना बुढ़ा हो गया हूँ, मेरे बाल गिर गए हैं, पर अरुण तो हमेशा 21 साल का ही रहेगा।
Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot? And days of old lang syne, for old lang syne, dear, for old.
Rehan Fazil, BBC, Delhi.
रेहान फजल की इस विवेचना के बारे में लिखिएगा अपनी राय। और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के हाथों हार का सामना करने वाली हिलेरी क्लिंटन ने पहली बार अपनी हार के लिए रूस की हैकिंग को जिम्मेदार बताया है। रूस हैकिंग के आरोपों से इनकार करता रहा है। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि उन्होंने सितंबर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि वो अमरीकी चुनाव प्रक्रिया में दखल देना बंद कर दें। सीरिया के पूर्वी अलेप्पो में फंसे लोगों को बाहर निकालने का अभियान थम गया है। अमरीका ने समुद्री ड्रोन जब्त किए जाने के मामले को लेकर चीन के सामने औपचारिक विरोध दर्ज कराया है। प्रेस की स्वतंत्रता की मांग को लेकर पोलैंड की संसद में हुए प्रदर्शन की वजह से बजट पर मतदान नहीं हो सका। संसद भवन में पत्रकारों की संख्या सीमित करने की सरकार की योजना के खिलाफ विरोधी पक्ष के सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीबीसी समाचार।
इसी के साथ नमस्कार भारत की सभा भी यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संचालन किया शाकिर आलम ने। तो अब अमरीश द्विवेदी को दीजिए अनुमति और देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। नमस्कार।